हरे प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सीतानवमी को सबको शुभकामनाएं। जाह्नवा भगवान श्री नित्यानंद के प्रियसी का भी आज प्रकट है, और मधु पंडित जिन्होंने राधा गोपीनाथ जिन के लिए प्रकट हुए जमुना में, जिनकी वो सेवा करते थे, उन सबका आज मंगलमय है। का दिन है और सबसे प्रार्थना मांगते हैं, और हम अपने भागवत में जो वंदना के अंतर्गत प्रार्थनाओं, जो भक्ति का एक अंग है, इसको कहते हैं स्तव पाठ या प्रार्थना है। ये 64 अंगों में भक्ति का एक अंग है। भागवत में ये सब प्रार्थनाएं हैं, जिनका विशेष कुछ का या सबका, जैसे हम एक शुभारंभ किया है, छठे स्कंद तक पहुंच ही गए हैं, तो ये भक्ति का एक अंग है। हम हंस गुह्य प्रार्थनाओं में दक्ष प्रजापति भगवान को बकरे के सर से मुक्त होके पाप की निवृत्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान प्रकट भी होंगे और पुनः वो प्रचेताओं के पुत्र के ऊपर प्रकट होंगे, फिर प्रजापति बनेंगे। परंतु वैष्णव अपराध इतना गहरा होता है कि फिर भी नारद जी का अपराध कर देंगे, उसको श्राप दे देंगे। पहले ब्राह्मण थे दक्ष, परंतु शंकर के अपमान के पुत्र, अपरांत वो क्षत्रिय के प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो सावधानी बहुत इसमें सीखने की है। फिर भी प्रार्थना उनके साधन में बहुत अच्छा अंग है। कल हमने 32वां श्लोक पढ़ा था, अस्ति इति नास्ति इति च वस्तु निष्ठयोर एक स्थयोर भिन्ना विरुद्ध धर्मणोः अवेक्षितं किंचन योग सांख्यायोः समं परम हि अनुकूलं व्रत तत्। तो विशेष रूप से बात यह थी कि दो प्रकार के, एक भक्ति के मार्ग वाले हैं और एक ज्ञान के मार्ग वाले हैं। ज्ञान वालों को सांख्य वाले के बोलते हैं, सन्यासी भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही भगवान को ढूंढ रहे हैं। एक कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, दूसरे कहते हैं रूप है। एक कहते हैं साकार है, दूसरे कहते हैं निराकार है। तो दोनों ढूंढ तो रूप को रहे हैं, एक न कह रहे हैं, एक हाँ कह रहे हैं। जो न कह रहे हैं वो भौतिकता भगवान में नहीं है, इसका खंडन कर रहे हैं। और जो कहे हैं, को जो कह रहे हैं भगवान का रूप है, वो भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो दोनों ही एक ही बात कर रहे हैं। बात यह है, एक संसार से विरक्ति की बात कर रहा है, एक भगवान में आसक्ति की बात कर रहा है। एक जड़ को ढूंढने की बात कर रहा है, एक जड़ में पानी देने की बात कर रहा है। तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु दोनों का दृष्टिकोण अलग है। इसका कल हमने प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे थे, जहां प्रभुपाद जी कह रहे थे सांख्य जो ज्ञानी है वो भौतिक भगवान के रूप का जो है खंडन करते हैं कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, और जो भक्त हैं वो कहते हैं भगवान का रूप है। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये तो गोविंद का रूप है, सब कारणों का कारण है, उनका सच्चिदानंद रूप है। उनके तो बहुत सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप है, दो भुजाओं में वेणु धारण किया हुआ है, और भगवान के चरण कमल तो एक ऐसी नौका है जिसका ध्यान करने से भवसागर पार हो जाते हैं। तो दोनों के अंदर ये जो वस्तु एक है, वस्तु निष्ठयो हो, इसका अर्थ है दोनों का विश्वास जो है वो तो एक ही वस्तु के ऊपर है। एक भौतिकता का निषेध कर रहे हैं, एक आध्यात्मिकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो ये दोनों ही ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं, परंतु उनके दृष्टिकोण जरा अलग है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। ये कहने का तात्पर्य झगड़ा करना ठीक नहीं है। तो भक्ति शास्त्रों में जो हमको निर्देश दिया गया है वो तो साक्षात भगवान ने दिया है, जैसे भगवत गीता में, और भगवान ही कहते हैं भक्तिया माम अभी जानान्ति, मुझे भक्ति के द्वारा एकमात्र आप जान सकते हो मेरे आध्यात्मिक रूप को। और दूसरी ओर जो ज्ञानी है उनके शास्त्रों में जो मार्ग है उसमें ज्ञानी कहते हैं भगवान के विराट रूप का ध्यान करो, जबकि वो भौतिक है, भौतिक जगत के अंदर है, उसका कोई आध्यात्मिक जगत में अस्तित्व नहीं है।
बड़ी बात नहीं, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय के साथ।
प्रभुपाद जी कहते हैं निरंतर विराट रूप का दर्शन कर, प्रभुपाद जी कहते हैं निरंतर विराट रूप का दर्शन बहुत समय तक नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए देखा, फिर हाथ जोड़ के कहा भगवान नहीं आप अपने दो हाथों वाले रूप में आ जाइए, वही हमको नित्य मित्रता उससे की जा सकती है, विराट रूप से मित्रता नहीं की जा सकती। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इसी का देखना चाहते हैं। और श्री मध्व आचार्य जी कहते हैं कम बुद्धि वाले जिनको मेध सा अल्प मेध है जो, वो कहते हैं वो समझते हैं कि उनका निर्णय ही बस अंतिम निर्णय है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। परंतु भक्त पूर्ण रूप से ये समझते हैं कि निराकार की भगवान का एक एक एस्पेक्ट है, एक दृष्टिकोण है, परंतु वास्तव में भगवान बहुत सुंदर स्वरूप वाले हैं जो आध्यात्मिक है। अब हम आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलं अनामरूपो भगवान् अनंतः नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिः भेजे सह मयं परं प्रसीदौ। यो अनुग्रहार्थं, यह मतलब वो भगवान परम पुरुष अनुग्रहार्थं हमारे ऊपर कृपा करुणा अनुग्रह करने के लिए, किसके ऊपर, भजताम पाद मूलम, जो भगवान के चरण कमलों का भजन करता है का मतलब सेवा करता है, भक्ति करता है। तो क्या कहते हैं, अनाम रूप भगवान अनंत, कोई नाम और रूप भगवान अनंत का नहीं है। कौन सा नाम रूप नहीं है, भौतिक नाम रूप नहीं है, परंतु नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी, परंतु भगवान अवतार लेते हैं तो उनका नाम भी है, रूप भी है, और जन्म भी है, और कर्म भी है। भेजे, ये जो शब्द भेजे है का मतलब जो भगवान प्रकट होते हैं, समयम, वो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वो परम पुरुष भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। तो दक्ष कहता है परम पुरुष भगवान जो अचिंत्य रूप से सर्वशक्ति संपन्न है, सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण है, जिनका कोई भौतिक नाम रूप या लीला भौतिक नहीं है, परंतु वो सर्वव्यापक है, फिर भी बड़ी भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, जो उनके भक्तों चरणों कमलों की सेवा करते हैं, उन भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए वो अपने दिव्य नाम गुण रूप और लीला से प्रकट होते हैं। वो भगवान जो अनंत है, जो नित्य है, जो सच्चित आनंद है, वो हमारे ऊपर प्रसन्न है, हमें हमारे ऊपर कृपा करें। अनंत भगवान जिनका कोई भौतिक नाम रूप नहीं है, परंतु जब वो प्रकट होते हैं तो जन्म लेते हैं, नाम होता है, क्रियाएं होती हैं, वो भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, हम भगवान के चरण कमलों का सेवा करें। चक्रवर्ती बात करें, दो शास्त्रों का वर्णन किया, भक्ति का शास्त्र और ज्ञान का शास्त्र, जिसमें एक कहता है भगवान के गुण है, दूसरा कहता है भगवान के गुण नहीं है। अब दक्ष यहां है, वो भगवान को कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करो। कौन से भगवान को कह रहे हैं, जो भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, और भक्तों के अनुग्रह भक्त के ऊपर भगवान कौन करते हैं, जो साकार हैं, जो अवतार लेते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान के भौतिक नाम रूप नहीं है, नाम रूप है, परंतु वो विशुद्ध सत्व में जब प्रकट होते हैं और भेजे का यहां अर्थ जब अवतार लेते हैं, भेजे का अर्थ है जब वो धरती के ऊपर प्रकट होते हैं तो उनके गुण और रूप और लीला सब होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस विषय में मुख्य शब्द है अनाम रूप, और श्रीधर स्वामी कहते हैं प्राकृत नाम रूप रहतो अपि, मतलब प्रकृति के भौतिक कोई भी भगवान का रूप नाम नहीं है, फिर भी अनाम शब्द जो है उसका मतलब है कोई नाम नहीं है, इसका अर्थ है भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है। अब प्रभुपद एकदम प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं जैसे नारायण का कोई नाम उच्चारण करे, अजामिल की भांति अपने पुत्र को नारायण कह के पुनः बुलाए, पर नारायण तो भौतिक है नहीं, नारायण तो वैकुंठनाथ का नाम है, नारायण नाम भौतिक नहीं है। यही यमदूतों को विष्णु दूतों ने कहा कि नारायण का नाम भौतिक नहीं होता। इसका अमृत अर्थ है कि अनाम का मतलब है भगवान के कोई भी भौतिक नाम नहीं है, सारे नाम चिन्मय है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, ये ध्वनि भी भौतिक नहीं है। प्रभुपाद का पहला जो हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर भाष्य उन्होंने बोला था रिकॉर्ड में, बोला ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, ये दिव्य कंपन है, शब्द ध्वनि है, ब्रह्म शब्द है, ये शरीर से ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर है, मन से ऊपर है, बुद्धि से ऊपर है, ये आध्यात्मिक स्तर पे है। और प्रभुपाद जी इसका प्रमाण देते हैं कि अगर ये आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होते तो ये पाश्चात्य देश के लोग, ये अफ्रीका और रशिया के लोग, ये अमेरिका और यूरोप के लोग हरे कृष्ण क्यों जपते, ये भौतिक होता तो क्यों जपते, ये आध्यात्मिक है इसलिए इन सबको आकर्षित करता है। और इसमें जो शब्द राम कृष्ण है उसमें भगवान का नाम भी है, गुण भी है, रूप भी है, इतने तीनों है, कृष्ण नाम भी है और कृष्ण भगवान का आकार भी है सामने, और कृष्ण भगवान की लीला है, सबको आकर्षण करता है, इसी एक नाम में सब कुछ है। और राम आनंद देने वाला है, नाम भी है, गुण भी है और लीला भी है, रमण करना, तो ये तो सब आध्यात्मिक है। ऐसे ही भगवान का धरती के ऊपर जब प्रकट्य होता है और लीलाएं होती हैं वो भी भौतिक नहीं होती, ये भगवत गीता में तो स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। अर्जुन मेरा जन्म मेरे कर्म दुनिया जैसे नहीं है, अलौकिक हैं, दिव्य हैं, इसको जो जान सकता है वो मेरे पास आ सकता है। भगवान भक्तों के ऊपर अहितों की कृपा करने के लिए केवल भक्तों के नहीं, अब भक्तों के ऊपर भी भगवान आते हैं तो कृपा ही करते हैं, तब भौतिक जगत में आते हैं और अपने नाम रूप गुण का सबको परिचय देते हैं, और ये सब दिव्य हैं। कम बुद्धि वाले नहीं समझ पाएंगे कि भगवान के नाम रूप गुण लीला को, परंतु भक्त तो उनका आनंद लेते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे तो कहेंगे भगवान का कोई नाम रूप नहीं है। परंतु बहुत ध्यान पूर्वक विश्लेषण करेंगे, अच्छी तरह से विचार करेंगे तो निर्णय ये निकलेगा, जो अभक्त हैं और जो कहते हैं भगवान का कोई नाम नहीं है, और दूसरे ओर भक्त हैं जो भगवान के नाम को प्रेम से सदा ही जपते रहते हैं, एक दृष्टि से दोनों ही एक ही बात कर रहे हैं, एक कहते हैं भौतिक नाम का नहीं है, एक कहते हैं आध्यात्मिक नाम है, लेकिन बात दोनों भगवान की कर रहे हैं, विषय तो दोनों का भगवान ही है। भगवान अजन्मा, वो कहते हैं भगवान अजन्मा है, वो बात भी सच है, झूठ नहीं है, क्योंकि भगवान ही भगवद गीता में कहते हैं अजोपिशन्न भी आत्मा भूता नाम ईश्वरों पर सम, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी युगे युगे। तो जब मैं धरती पे आता हूं तो विशुद्ध सत्व में आता हूं, तब मेरे रूप नाम गुण सब दिव्य होते हैं, ये मेरी भक्तों के ऊपर कृपा है। दूसरे भले इसके ऊपर तर्क वितर्क करते रहे, परंतु भक्तों को इस कृपा का लाभ लेना है वो लेते हैं और वो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते, ठीक है वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते, परंतु फिर भी वो सब कुछ करते हैं। हम जो करते हैं उसकी भी अनुमति वही देते हैं, परंतु हम सब लोगों को ये दिखाई नहीं देते, देता ही नहीं है। अब कम बुद्धि वालों को कहां से दिखाई देगा, सारा भौतिक जगत भगवान के निर्देश में चल रहा है। कुछ भी नहीं करते हुए भगवान सब कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, अपनी शक्तियों से। तब एक श्लोक दिया हुआ है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान के लिए न कोई कार्य है न करने के लिए कुछ है, न तत् शमस चा अभ्यद अधिक च दृश्यते, न कोई उनके समान है न कोई उनसे अधिक है, परास्य शक्ति विविधई श्रुते, भगवान की परम शक्तियां हैं बहुत सारी, उनके द्वारा सारे काम होते हैं, स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, एक स्वरूप शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति है, एक बल शक्ति है, क्रिया शक्ति है। ये स्वतः स्वर उपनिषद का श्लोक है चैतन्य मध्य लीला में। स्वयं भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो सब कुछ अपने शक्तियों के द्वारा करते हैं। वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं भगवान का नाम तो नित्य सदा शाश्वत है ही, और भगवान की लीलाएं भी दिव्य हैं। भगवान को कभी कभी कहते हैं गुण कर्म नाम, को भगवान का जो नाम है वो दो प्रकार से होता है, या गुणों के आधार पे होता है या कर्म के आधार पे होता है। जैसे कृष्ण है, ये भगवान के गुण के आधार पे नाम है, सबको आकर्षण करने वाले, क्योंकि सबको आकर्षित करता है इसलिए ये गुण के आधार पे नाम है। अब लीला के आधार कर्म पे आधार पे नाम है, गोवर्धन धारण किया तो गिरधारी हो गए, असुरों को मारा तो मधुसूदन हो गए, अघासुर को मारा तो अघनिषूदन हो गए, तो ये है कर्म के आधार पे नाम। एक भगवान के मुख्य नाम होते हैं, एक गौण नाम होते हैं। जैसे कृष्ण है मुख्य नाम है, ईश्वर है गौण नाम है, परमात्मा गौण नाम है। इसलिए प्रभुपाद को जब कहा कि गॉड कॉन्शियस सोसाइटी बनाओ, बोला नहीं, हम कोई ऐसा नाम नहीं देना चाहते जिसके ऊपर कोई अपने अर्थ निकाले। हम तो वास्तविक जो भगवान का अनादि नाम है, नित्य शाश्वत नाम है, जो मुख्य नाम है, वो देना चाहते हैं, कृष्ण भावना अमृत संग। तो भगवान को कभी अभक्त अनाम भी कहते हैं, इसका मतलब भौतिक नाम नहीं है, उनके कर्म और उनके नाम सब आध्यात्मिक है। फिर बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं कम समझ वाले लोग भगवान के सच्चित आनंद विग्रह को नहीं समझ पाते। परंतु भगवान तो धरती पे आते हैं तो उनका मुख्य आने का उद्देश्य परित्राण है साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भी हुए हैं, भक्तों की रक्षा करके असुरों का संहार करके दिखाया, और जो कार्य भगवान ने किए हैं वो सब अद्भुत हैं, दिव्य हैं, और कोई ऐसे कार्य कर ही नहीं सकता। भगवान ने द्वारका में 16,108 विवाह किए, कौन कर सकता है, ये भगवान की अतुलनीय कार्य है, उनकी तुलना की नहीं जा सकती। और भगवान ने बहुत से अनेक विचित्र अद्भुत कार्य किए, फिर भी प्रभुपाद कहते हैं उनका वास्तविक नाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही भागवत में भगवान का वास्तविक नाम है, और वो अनंत रूपों से अनंत लीलाएं करते, और उनकी हर एक लीला से उनका अद्भुत नाम है। रास बिहारी हो गया, माखन चोर हो गया, ऐसे हजारों लाखों नाम भगवान के, सहस्र नाम है। आगे के श्लोक में कहते हैं, यह प्राकृति ज्ञान पथैहि जनानां यथाश्यं देह गतो विभाति यथानिलः पार्थिवम् आश्रितो गुणान् स ईश्वरो मे कुरुताम मनोरथम। स ईश्वर, वो ईश्वर मे, मेरा, दक्ष कहता है, कुरतान, मेरी इच्छा को पूरा करे, मनोरथम, जो मेरी भगवान आपकी भक्ति करने की इच्छा है, मनोरथ है, वो पूरा कीजिए। कौन सा भगवान पूरा करे? ये यह जो भगवान प्राकृत, प्राकृत का मतलब अपने आध्यात्मिक स्तर से नीचे भौतिक स्तर।
अरे रही लड़की जा,
जो आध्यात्मिक स्तर से भौतिक स्तर पे उतर आए, ज्ञान पथे जानानाम, ज्ञान के मार्ग से पूजा करने वाले को जनानाम, यथा आश्यम, जैसे उनकी इच्छा है, देहगत, उनके हृदय में बैठे हुए हैं, विभाति, प्रकट करते हैं, कैसे, अनिल पार्थिवम, अनिल का मतलब है हवा और पार्थ का मतलब पृथ्वी, आश्रित, हवा जब पृथ्वी के ऊपर चलती है तो फूलों से गंध लेती है, दुर्गंध भी लेती है कहीं कचरा है तो, गुणान, उसके गुण लेती है। सह, वैसे भगवान ईश्वर, वो भगवान हमारे मन को पूरा करें, मन की इच्छा को पूरा करें। जैसे हवा धरती के ऊपर जब बहती है तो फूलों से उनकी सुगंध लेती है, और कभी मिट्टी है तो उसके अंदर वो रंग भी आ जाता है, जैसे होली में गुलाल का रंग दिखता है, और कहीं दुर्गंध भी दिखती है। ऐसे भगवान जो नीचे स्तर के पूजा करने वाले हैं, अर्थात देव देवी देवता की पूजा करने वाले हैं, जो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए देवता के माध्यम से कार्य करते हैं, अपने असली रूप में नहीं आते हैं। तो उन रूपों की क्या जरूरत है जो नीचे स्तर के रूप हैं? मैं तो वास्तविक भगवान आपके पूजा करता हूं, आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। भगवान सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं, जो अभी कच्चे हैं, इमेच्योर है, ज्ञान के मार्ग में है, वो तो अपने को जीव मानते हैं, भगवान को ही जीव जैसा समझते हैं। उनका भाव ऐसे है जैसे हवा के अंदर दुर्गंध और सुगंध और मिट्टी होती है, परंतु वो भगवान हमारी इच्छा पूरी करे। चक्रवर्ती बात कहते हैं, ये तो बहुत बात स्पष्ट है कि भगवान और जीव में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान तो अनंत ज्ञान के सागर है, जीव तो बेचारा अल्पज्ञ है। ये बातें 24वें और 25वें श्लोक में हम पढ़ के आए, और 26 और 27 श्लोक में ये भी कहा गया है कि भगवान के साकार और निराकार दोनों रूप है, और साधक के अनुभव के अनुसार दोनों की अनुभूति होती है। ज्ञानी निराकार रूप को करता है, भक्त साकार रूप का अनुभूति करता है। आगे 28 से 30 श्लोक तक, 29 और 30 में, ये भौतिक जगत भी भगवान का रूप है ऐसा माना गया है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, परंतु वो भगवान के स्वरूप से उत्पन्न नहीं होते। 31 और 32 श्लोक में ये कहा गया है, भक्ति और ज्ञान, इनके जो शास्त्र हैं वो एक भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, परंतु उनका रास्ता अलग अलग है। तो अब दक्ष जो है ये बताना चाह रहे हैं कि जो कहते हैं कि जीव और भगवान में अंतर नहीं है, और जो ज्ञान के मार्ग वाले हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं भगवान आपको प्रार्थना करते हूं कि मेरी इच्छा पूरी करो। उनके शरीर में भगवान प्रकट होते हैं जो अधूरे ज्ञान वाले हैं। कच्चे ज्ञान वाले। उनको लगता है भगवान हमारे जैसे जीव है। और उदाहरण है, हवा में सुगंध और दुर्गंध को हवा समझना तो ठीक नहीं है, हवा तो निर्लेप है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निराकारवादी निर्विशेषवादी वो ये विचार करते हैं देवता और भगवान में कोई अंतर नहीं। मायावादियों की उपासना है पंच देव उपासना, उसको कहते हैं पंच उपासना। वो विष्णु की भी उपासना करते हैं, शंकर जी की भी उपासना करते हैं, गणेश की भी उपासना करते हैं, देवी की भी उपासना करते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं। ये पंच देव उपासना, इसको कहते हैं पंच उपासना। विष्णु, शंकर, गणेश, देवी और सूर्य। परंतु किसी एक को भगवान नहीं मानते, सभी भगवान है ऐसे मानते, वो भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते। वो उस केवल मन से विचार करते हैं कि ये पांच देव है, ये भगवान है। प्रभुपाद ने ये चार पांचों के नाम लिखे हैं, इसको पंच उपासना कहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं दक्ष यहां पंच उपासना नहीं करना चाह रहा है, दक्ष तो यहां भगवान कृष्ण की उपासना करना चाह रहा है। इस विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, भगवान और जीव में बहुत बड़ा अंतर है। सर्वम पुमान वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वम ज्ञान अनंतम ईडे, ये 24-25 श्लोक है। भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, जीव थोड़ी है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मैं सबको जानता हूं परंतु मुझे कोई नहीं जानता। यह है भगवान और जीव में अंतर। और भागवत के प्रार्थनाओं में कुंती महारानी कहती है, आप अंदर और बाहर रहते हैं, सर्वत्र हैं, आपको हम कैसे जान सकते हैं। बद्ध जीव भगवान को नहीं समझ सकता, वो कितना भी ज्ञान से चर्चा करे, विचार करे, सोचे, अनुमान लगाए, परंतु भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवान जब तक स्वयं किसी के ऊपर कृपा करके प्रकट न हो तो कोई नहीं जान सकता है, ऐसे भागवत में लिखा है। अथापि देव पदाम्बुज देव दिव्य प्रसाद लेशांगृहीत एव ही जानाति तत्त्वं भगवत महिमानो चान्य एको पिचरम विचिन्वन। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है श्री कृष्ण 5 साल के बच्चे को। हे भगवान, जिसके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं ना, वही आपके चरण कमलों की कृपा को प्राप्त कर सकता है। दूसरे चाहे जुगों तक विचार करते रहें, शास्त्र पढ़ते रहें, कभी नहीं समझ पाएंगे, ये शास्त्र का निर्णय है। सामान्य व्यक्ति कोई बड़ा दार्शनिक नहीं है, बड़ा विद्वान नहीं है, वो विचार भी इतना नहीं कर सकता है। परंतु अगर कोई सेवा न मुख्य ही जीवाद स्वयं ही ऊपर स्पर्त्याद, अगर सेवा करेगा तो भगवान अपने कृपा से प्रकट होकर उसको अनुभूति कराएंगे। और वो सेवा जीवा से शुरू होती है, नाम जपना और प्रसाद खाना। भगवत गीता में कहते हैं भगवान केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, तत्व से, और कोई साधन नहीं। कोई अपने मन से भगवान का रूप की कल्पना करना मूर्खता है। इसलिए दक्ष कह रहा है कि मैंने दोनों आपके साकार निराकार का वर्णन कर लिया, परंतु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी इच्छा पूरी करो। तो इच्छा वही पूरे करेगा जो वास्तव में पुरुष होगा, व्यक्ति होगा, वही इच्छा पूरी करेगा। जो जिसका रूप रंग नहीं है वो आपकी सुनेगा ही नहीं, कान ही नहीं है तो सुनेगा क्या, सुनेगा नहीं तो आपकी क्या इच्छा पूरी करेगा। श्री रविशनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं कि ये श्लोक विशेष रूप से निर्विशेषवादी ज्ञानी कच्चे हैं उनके लिए है, जो कहते हैं भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है। मायावादी कहते हैं भगवान के ऊपर माया का पर्दा है और हमारे ऊपर भी माया का पर्दा है, हमारी माया को उतर जाएगी तो हम भी भगवान बन जाएंगे। परंतु ये वास्तव में ज्ञान नहीं है, ये तो मूर्खता है। ये श्लोक ऐसे मूर्खों के लिए है जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। माया परत ज्ञानम, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ऐसे ज्ञान मानी ना है, जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं वास्तव में ज्ञानी है नहीं। इस विषय में, इस संदर्भ में श्री मध्वाचार्य कहते हैं स्वदेहस्थम हरिम प्राहो अधमा जीवम एव तु मध्यमाश्चापि अनिर्णितम जीवाद भिन्नम जनार्दनम। स्वदेह स्तम हरिम प्राहुर, अपने देह में हरि है कहने, तीन प्रकार के चिंतन करने वाले हैं। एक अधम है, अधम कौन है? एक अधम है, एक मध्यम है, एक उत्तम है। यह तीनों शब्द है, अध्यम मध्यम और उत्तम। तो अध्यम अधम कौन है, मध्यम कौन है, उत्तम कौन है? अधम वो है जो समझता है कि मैं और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मेरे हृदय में मैं आत्मा परमात्मा एक है, वो है अधम। बस जीव को उपाधि है, भगवान उपाधि रहते हैं, उनकी भाषा ये है। जैसे उपाधि समाप्त हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, जीव परमात्मा हो जाएगा, भगवान में विलीन हो जाएगा। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, घट आकाश पट आकाश। घट आकाश, घट का मतलब मिट्टी का मटका, उसके अंदर जो खाली जगह है उसको घट आकाश कहेंगे। उसको तोड़ दो, वो नहीं रह गया, तो जो उसके अंदर जो जगह थी वो सारी बड़ी जगह से मिलके एक हो गई, घट आकाश मट आकाश। जो घट आकाश वाला जो है पट आकाश, वो आपस में मिलके एक हो गया। यहां हमारे शरीर को मटके से तुलना की जाती है और बाहर जो है सारा वो आकाश है, मटका टूटा, सब दोनों मिलके एक हो गए। ये उनका सिद्धांत है। मध्वाचार्य कहते हैं ये है अधमों का, जो नीचे स्तर के हैं उनका तर्क वितर्क है ये। इससे ऊपर है मध्यम, वो कहते हैं कि भगवान है जो सारे कामों को चलाता है, जीवों का भी स्वामी है, उसको कहते हैं मध्यम। परंतु उत्तम वो है जो परम पुरुष भगवान को सच्चिदानंद विग्रह को समझे, पुराण पुराण अनादि दि गुणकम स सर्वजीव विलक्षणम। उनका रूप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद रूप है और जीव से बिल्कुल विलक्षण है। उत्तम तो हरिम पाप्राहु तारतमयेन तेषु च, ऐसे जो दार्शनिक है बुद्धिमान है वो सबसे उत्तम है, जो भगवान को समझते हैं, जिनको भगवान अपने आप प्रकट करके अनुभूति कराते हैं, रिवील करते हैं। भौतिक जगत में तो लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं, परंतु उन सबके ऊपर एक भगवान है। अब 33 करोड़ की पूजा कब तक करोगे, कहां 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 तक करोगे, किसका संग करोगे? भगवान एक है, सभी उसके अधीन है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मत परतनम नास्ति कुंचदस्ति धनंजय, धनंजय मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये सारे देवी देवता भगवान के अधीन है, एक भगवान की पूजा करने से सब प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर ब्रह्मा आदि सबसे ऊपर है, यह शास्त्रों का निर्णय, इसको कहते हैं उत्तम साधक। ऐसे लोग भगवान को जान सकते हैं। देव देवेश्वरम सूत्रम आनंदम प्राण विधीना, ये समझ सकते हैं, यह हमारा प्रार्थना पूरी होती है। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आज कथा को थोड़ा विराम देने है मेरे को, सीता नवमी की कथा करनी है मॉरिशस वालों के लिए, अब 8:05-7 पे शुरू करनी पड़ेगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान जो भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं, दक्ष के प्रार्थना को सुनकर अग्रमर्षण जगह में जहां वो प्रार्थना कर रहे थे, भगवान प्रकट हुए, गरुड़ के ऊपर, कंधों के ऊपर आरूढ़ भगवान वहां आ गए, और उनके 8 भुजाएं थी, और उन 8 भुजाओं में चक्र था, शंख था, तलवार थी, ढाल थी, और धनुष था, बाण था, और एक रस्सी थी, और एक गदा थी, और पीला पीतांबर पहना हुए थे, और स्वयं सांवले रंग के थे, वैजंती माला पहनी हुई थी, छाती तक, छाती पे कौत्सव मणि थी, माला तो घुटनों तक बड़ी होती है, और कौत्सव मणि थी, श्री वत्स का चिन्ह था, और सर के ऊपर बड़ा सुंदर मुकुट पहना हुआ था, पांव में पायल थे, कानों में कुंडल थे, मकराकार कुंडल थे, और कमर के ऊपर स्वर्ण पट्टा बंधा हुआ था, तीनों लोगों को आकर्षण करने वाले। अपने संग में नारद को लाए थे, नंद सुनंद उनके सेवता सेवक थे, और देवता भी आए थे, और सिद्ध और चारण और गंधर्व भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। तो यहां भगवान प्रकट हुए, अब भगवान दक्ष को उसके प्रार्थनाओं का फल देंगे। दक्ष ने जब ये भगवान का अद्भुत रूप देखा, थोड़ी देर के लिए भयभीत भी हुआ, परंतु फिर एकदम प्रसन्न हुआ, और दंड की तरह दंडवत प्रणाम किया भगवान को बड़े आदर के साथ। जैसे पर्वतों से नदियां नीचे उतरती हैं, ऐसे दक्ष की सारी इंद्रियां आनंद से परिपूर्ण हो गई। ये अद्भुत उत्तम आनंद का दक्ष को सुख मिला, कुछ कह नहीं पाया, धरती पे पड़ा रहा दक्ष, कुछ नहीं कह पाया दक्ष, परंतु भगवान उसके हृदय को जान गए कि इसके हृदय में प्रजा बढ़ाना है, ये प्रजापति है। तो भगवान उनको अब संबोधन करके कहने लगे, भगवान ने कहा, सुनो हे भाग्यशाली प्रचेताओं के पुत्र दक्ष, आपकी तपस्याएं बहुत उत्तम है, और आपकी श्रद्धा मेरे प्रति बहुत महान है, हे प्रजापति दक्ष, मैं आपसे प्रसन्न हुआ, जाओ सृष्टि को बढ़ाओ, ये मेरी इच्छा है, सृष्टि बढ़ाने का आप जाके कार्य करो। ब्रह्मा शिव मनु और सारे देवता ऊपर लोकों के, और आप प्रजापति, आप सबको सृष्टि को बढ़ाना है, सबके हित का कार्य करना है, आप सभी एक प्रकार से मेरा शक्ति का अवतार हो, और ये सब कार्य करो। तो ऐसे भगवान ने फिर दक्ष को ये सब उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर दर्शन दिया, और दर्शन भी दिया तो आशीर्वाद भी दिया। अब यहां हम विराम देते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, इसके बाद क्या है हमारा, 6 स्कंद में है कुछ आगे, देखना पड़ेगा मुझे,
छठा शुरू करेंगे,
छठे का
छठे में,
हाँ हाँ
छठे में, इसके आगे वो है 9th चैप्टर में जो देवी देवताओं की प्रार्थनाएं जो है।
ओके, 9 को देखते हैं, कौन से श्लोक से देखेंगे, कल 9 वाले कथा करेंगे, ठीक है, कल ढूंढेंगे 9 में क्या है। हरे कृष्ण,
वृत्रासुर वाली आप बता रहे थे ना, वृत्रासुर वाली
प्रार्थनाएं तो वृत्रासुर की हैं, वो आगे आएंगी मेरे ख्याल में, ग्यारहवें
वो उसकी सिर्फ चतुर्श्लोक जो चतुर्श्लोक की वो करनी,
तीन उनके श्लोक हैं जो बलराम जी की प्रार्थना के करते हैं और चतुर्श्लोकी का है, देखेंगे है तो सही, प्रार्थना तो है वृत्तासुर की
जी जी,
बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है, पूरा वल्लभ संप्रदाय उसी चार श्लोकों के ऊपर सारा उनका सिद्धांत टिका हुआ है।
ठीक है ब्रदर।
हाँ हाँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, गिरिराज महाराज ने लिखा है आई विल बिल्ड टेम्पल फॉर यू, तो उसमें लिखा है कि मैं एक वल्लभाचार्य संप्रदाय का, उन्होंने चार श्लोक मुझे पढ़े सुनाए, प्रभुपाद को आके सुनाया, प्रभुपाद ने छठे स्कंद से उनको पढ़ के सुनाए, और सब उसमें लिखा हुआ था जैसे खाते से। तो मतलब इसका ये है कि चर्चा होती रहती है ये श्लोकों की, तो उसको हमने तो पहले किया था लास्ट ईयर, आरंभ ही इनसे किया था शायद।
जी जी
बराबर। अच्छा चार जा रहे हैं तो एक दिन में हो जाएंगे तो कर लेंगे, तो अभी नौ, पहले तो नौ आएगा ना, उसके बाद वो ग्यारह में होने चाहिए ना, वो
आगे है चैप्टर में कोई याद नहीं,
आगे होंगे वो, चलो कल नए में नौ में देखते हैं क्या है, कौन से श्लोक से कल कोई ढूंढूंगा मैं क्या है। हरे कृष्ण,
कल इक्कीसवां
है, इक्कीसवां है, चलो इक्कीसवें को देखते हैं, किस उसे ऊपर देखना पड़ेगा क्या है उसमें, इक्कीस नौ का इक्कीस देवता, हाँ देवता बोल रहे हैं, श्री देवा उचुहु वायुहु अम्बराग्नेह अपि, चलो क्या प्रसंग क्या है देखेंगे कल, ठीक है। और कोई किसी का प्रश्न जिज्ञासा है,
वृत्रासुर की ग्यारहवां चैप्टर है, ठीक है,
ग्यारह होगा, मेरे को ध्यान है ग्यारह होना चाहिए
जी।
चलो जी, और समाचार सब कुशल मंगल,
ग्रेस आर्बम प्रभु जी की
हरि बोल।